This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember, we do not address stock or company specific queries. You can of course call us on 2331-4444-234-21050 and 2331-0464. I'm Gaurandhavan Lal with my co-anchor Siddharth Singh.
नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके सवालों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं. नंबर है 2331444-2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्लैरिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन सकें. और अब नजर डालते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस, सुनते हैं कौरा से. और श्रोताओं, इससे पहले आपको बता दें कि आर्थिक जगत से जुड़े आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल को. नमस्कार अमन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
नमस्कार.
और अब इंग्लिश में हेडलाइंस.
थैंक यू. एब्सोल्युटली थैंक यू सिद्धार्थ एंड अमन, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. लिसनर्स, अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. इंडिया विल एंटर इनटू ट्रेड अग्रीमेंट्स ओनली इफ दे सर्व द कंट्रीज इंटरेस्ट्स, सेज यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल. Union Minister Ashwini Vaishnaw says India is rapidly laying its technological base to achieve the goal of Viksit Bharat, urges young professionals to design world-class technologies and products, and the US markets end flat amid volatile trade.
और अब नजर डालते हैं हिंदी में हेडलाइंस पर. केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत तभी व्यापार समझौते करेगा जब वे देश के हितों की पूर्ति करेंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से अपना तकनीकी आधार तैयार कर रहा है. उन्होंने युवा पेशेवरों से विश्व स्तरीय तकनीकें और उत्पाद डिजाइन करने का आग्रह किया. और उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच अमरीकी शेयर बाजार सपाट बंद हुए. सबसे पहले बात करते हैं घरेलू बाजार की, जिसके सूचकांकों में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस हफ्ते 743 अंक या 0.9% गिरकर 81,758 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181 अंक या 0.7% गिरकर 24,968 पर बंद हुआ. लेकिन व्यापक बाजारों में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1% और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% की बढ़त दर्ज की गई.
वी हैव अ फर्स्ट कॉलर विवेक फ्रॉम दिल्ली. विवेक, वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
हाँ, धन्यवाद.
नमस्कार
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ. हेलो.
नमस्कार जी.
जी जी बोलिए.
कि अगले महीने में हमारी एफडी मैच्योर हो जाएगी, तो हमें ये बताएं हमें एफडी में ही बने रहना चाहिए क्या, हमें मार्केट में कुछ पैसा लगाना चाहिए या हमें कुछ पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए, गोल्ड या सिल्वर में, क्योंकि हमारे पास एफडी कम से कम भी तो मैच्योर होने के बाद 35 लाख की हो जाएगी.
देखिए जी, ये आपको देखना है कि आपने पैसा कितनी लिक्विडिटी अपने पास रखनी है और कितना आप निवेश करना चाहते हैं. गोल्ड में आप करना चाहते हैं, गोल्ड इस समय बढ़ रहा है, पर कब तक बढ़ेगा अभी इसका कोई निर्धारित नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चल रहा है. सेंसेक्स में थोड़ा रिस्क रहता है, अगर आपने मार्केट में पहले इन्वेस्ट नहीं किया है तो मेरे विचार में अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट में नहीं करना चाहिए, एकदम से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक फिक्स डिपॉजिट्स है, फिक्स डिपॉजिट के अलावा आपके पास कितना निर्धारित समय है, किस एज ग्रुप में है आप, उस बेसिस पे आप आरबीआई बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। उसमें निर्धारित इंटरेस्ट रेट आता है, आपको अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, अच्छा इंटरेस्ट रेट मार्केट एफडी बॉन्ड बैंक से ज़्यादा मिलता है और 100% सिक्योर है। जैसे जहाँ बैंक में 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी निर्धारित की जाती है, जो आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें 100% आपका प्रिंसिपल सेफ रहता है। तो अगर आपको लिक्विडिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इंट्रिम 6-6 महीने पे जो इंटरेस्ट आता है उसके आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं।
और बढ़ते अपने अगले कॉलर की ओर, दिल्ली से बीआर नाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नाथ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो नाथ जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? उनकी आवाज़ क्लियर नहीं है और सुनाई भी नहीं दे रही, तो हम बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, शंकर जी। शंकर जी नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्ते मार्केट मंत्र जी।
नमस्कार
जी, अपना सवाल
पूछिए। सर, ये जून के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं आए हैं अर्निंग के, क्या वजह हो सकती है? नंबर वन। नंबर टू, क्या व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इन टोटलिटी? क्या बेटर जाएगा देन 2024-25 या इट विल इंप्रूव? ऐसा लगता होना, मतलब हमारी उम्मीद है कि इंप्रूव होना चाहिए। 25-26 शुड बी बेटर देन 24-25 या बिकॉज ऑफ ट्रंप वी विल हैव सर्टेन इश्यूज विद द आईटी कंपनीज एंड ऑयल प्राइसेस एंड देन सैंक्शंस एक्सेट्रा ऑन द सेकेंडरी सैंक्शंस दैट विल अफेक्ट एंड वी विल गो डाउन इंस्टेड ऑफ व्हाट वी वेंट इन 24-25।
आई पर्सनली फील दैट द मार्केट विल परफॉर्म बेटर एंड द इकोनॉमी इज फंडामेंटल्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर डूइंग वेल, सो वो अच्छा ही जाएगा आगे एज अ फाइनेंशियल ईयर प्रोजेक्शन विच इज देयर। Currently, it is low. There are 2-3 reasons. One of them is the FII outflow, which is taking place extensively, which is making the stock markets move down. दूसरी चीज़ ये है कि लिक्विडिटी सरकार ने बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ा दी है, जो एकदम से रेट कट हुए हैं, 2 एकदम से रेट कट्स किए गए हैं आरबीआई से, जो ईज करने के लिए फाइनेंसिंग, और वो जो रेट कट्स हैं मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और रिटर्न्स मार्केट नहीं दे पा रहा है उसके रेट कट्स की वजह से। तो अभी जो ये क्वार्टर निकला है और जो आगे भी क्वार्टर है, हो सकता है उसमें कुछ हमें नेगेटिविटीज़ या ज़्यादा बढ़ोतरी ना देखने को मिले, बट थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में हमें अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा।
We have a caller from Bihar, Tinku. Tinku, welcome. Please ask your question. सवाल पूछेगा।
नमस्ते मैडम।
नमस्कार। सवाल पूछिए प्लीज।
नमस्ते मैडम।
हाँ नमस्ते टिंकू जी, सवाल पूछेगा।
आप थोड़ी देर पहले जो आरबीआई का बॉन्ड के बारे में बताए थे,
हाँ,
इस बारे में हमें जानकारी चाहिए। आरबीआई का बॉन्ड कितने के पॉलिसी मिलता है और इसको कैसे आता है?
बिल्कुल, आप
और कितने साल का होता है ये जानकारी?
बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पहली बात, ये जो है 7 साल के लिए बॉन्ड होता है, 6-6 महीने में अंतराल पे इसमें इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता है। आप किसी भी एसबीआई की शाखा, जो मेन ब्रांच है, उसमें जाके उसके निर्धारित कर सकते हैं। उसके अलावा 4-5 और बैंक्स हैं, HDFC भी है, इसके अलावा 4-5 और बैंक्स निर्धारित किए गए हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। इनको हम आरबीआई बॉन्ड्स कहते आए हैं क्योंकि शुरू में आरबीआई के थ्रू दिए जाते थे, वैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं और ये पैसा, जैसे मैंने कहा, 100% प्रिंसिपल इसमें सिक्योर रहता है एज अगेंस्ट एनी अदर इन्वेस्टमेंट। किसी और इन्वेस्टमेंट में 100% सिक्योरिटी नहीं मिलती है, इसमें हमें मिलती है।
सो इसमें SBI एंड सम डेजिग्नेटेड बैंक्स, किस सारे बैंक्स में होता है?
नहीं, सारे बैंक्स में नहीं होता है। There are certain designated banks only जिनको ये license दिया गया है कि वो ये सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करके bonds में पैसा लें, और इसमें कोई limitation नहीं है। आप जो है 10,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, 10 करोड़ भी कर सकते हैं, 100 करोड़ भी कर सकते हैं। पहले ये institutions, trusts, societies और कॉलेज सबके लिए था, पर अब सिर्फ इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की, जो फैमिली रजिस्टर्ड होती हैं टैक्स पेयर्स में, वो कर सकते हैं।
तो इनको बैंक में जाना है और बोलना है मुझे आरबीआई बॉन्ड खरीदने
हैं। आरबीआई बॉन्ड खरीदने हैं, फिर वो निर्देश करेंगे कि उनकी ब्रांच कर रही है या कोई बड़ी ब्रांच वो फैसिलिटेट कर रही है।
और दोबारा हम लौटते हैं दिल्ली और बी आर नाथ जी से बात करते हैं। नाथ जी नमस्कार। हेलो जी नाथ जी, आपको आवाज आ रही है? शायद आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, पहले भी आपने कॉल किया था। अब हम चलते हैं फरीदाबाद और बात करते हैं प्रेम जी से। हेलो प्रेम जी।
जी जी नमस्कार।
जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम मार्केट मंत्र में, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार जी, हमें ये पूछना है एक बैंक में कितना पैसा हमारा गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योर रहेगा, जैसे 5 लाख रुपए आपने बताए थे पहले, ये अभी जो आप बता रहे थे बॉन्ड के बारे में, इसके बारे में थोड़ा क्लियर खुल के बताइए ये क्या है, क्योंकि एफडी वगैरह जो होती है एक तो बैंकों के थ्रू होती है, और किस किन किन बैंकों में ये आप बता रहे हैं बॉन्ड मिल सकते हैं, इसकी थोड़ी सी और जानकारी आप बताइएगा।
पहली बात तो जी, जो एफडी होती है वो एफडी या बैंक अकाउंट में किसी में रखते हैं, एक खाते के ऊपर 5 लाख की सिक्योरिटी आपको मिलती है। मतलब कि अगर आपके अलग अलग खाते हैं एक ही बैंक में या अलग अलग बैंकों में, हर एक खाते के ऊपर आपको 5-5 लाख की सिक्योरिटी अलग अलग बैंकों में मिल सकती है। तो अगर आपको ऐसे डाइवर्सिफाई करना है तो आप अलग अलग बैंकों में खाता खोल के और वहाँ पे आप अपने डिपॉजिट्स रख सकते हैं, तो 5 लाख की वो सिक्योर रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारत के अंदर अभी तक कोई भी बैंक ऐसे फेल नहीं हुआ है। डिफ़िकल्टीज़ जरूर आई हैं कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में, कुछ छोटे बैंकों में, पर आज तक कोई बैंक फेल नहीं हुआ। पीछे 90 में, 2010 के दशक में, 2000 के दशक में कुछ बैंक्स में प्रॉब्लम आई थी, उनको आरबीआई ने बड़े अच्छी तरीके से मर्ज किया और किसी भी इन्वेस्टर का, सेवर का पैसा नहीं लूज किया। तो इसलिए ये घबराने के लिए जरूरत नहीं है कि नहीं सेफ है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये टैक्सेबल बॉन्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, आरबीआई बॉन्ड्स के भी नाम से जाने जाते हैं। इसमें 7 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल के बाद आपको विड्रॉल अलाउड है। सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ समय पहले भी विड्रॉल अलाउड है अगर करना चाहें, पर इसमें रहता है। उसके अलावा आप पीपीएफ में भी पैसा रख सकते हैं जो नॉमिनी निर्देश करें, उससे भी आपको अच्छा रिटर्न पीपीएफ में मिलता है, जो वो भी सरकार के पास रहता है, क्योंकि पीपीएफ का भी जो पैसा जमा होता है वो हर एक बैंक के अंदर आप कर सकते हैं। ज़्यादातर सारे ही बैंक निर्देशित हैं इसके लिए, पर हर एक ब्रांच निर्देशित नहीं होती है। आपको बैंक में जाके बात करनी है कि मुझे तो टैक्सेबल बॉन्ड या पीपीएफ अकाउंट खोलना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनके अंदर फिर आप निवेश करके सेफ तरीके से पैसा रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये भारत सरकार के पास रखा जाता है पैसा, इसलिए ये बैंकों के पास नहीं रखा जाता, बैंक सिर्फ मीडियम रहते हैं इनका, तो इसलिए 100% ये पैसा सिक्योर रहता है प्रिंसिपल के साथ।
एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ जो ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री होता है?
वो टैक्स फ्री होता है, बट जो ये टैक्सेबल बॉन्ड है उनमें टैक्स कटता है। जब आपको ब्याज मिलेगा वो टैक्स कट करके ही मिलेगा, 6-6 महीने के अंतराल पे।
जी, नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली, मोहित, वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
नमस्कार।
नमस्कार।
नमस्कार
सर, मेरे को पूछना था कि क्वांट्रो कैपिटल क्वांटम एआई के नाम से कोई कंपनी है क्या, जिसमें क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सेफ है क्या? और दूसरा पूछना था, इस कंपनी का क्या गूगल के फाउंडर से कोई रिलेशन है क्या सर, क्वांट्रो कैपिटल क्वांटम एआई?
Mohit, though we appreciate your question, we'd like to share that company-specific queries we do not address on this program. But anyway, thank you for calling in. If you have any other questions, please call us again. Meanwhile, listeners, we'd like to take you through the first headlines. Union Minister of Commerce and Industry, Mr. Piyush Goyal, today said that the free trade agreement between India and the four-nation European bloc, European Free Trade Association, EFTA, will be implemented from the 1st of October. The Union Minister, addressing the session organized by ASSOCHAM on creating global impact towards Viksit Bharat, said the two sides had signed the Trade and Economic Partnership Agreement on the 10th of March last year. The European Free Trade Association members are Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. The bloc has committed an investment of $100 billion, of which $50 billion will be invested within 10 years after the implementation of the agreement, and another $50 billion in the next 5 years. It will facilitate the creation of 1 million direct jobs in India. The minister reiterated that India will enter into international trade agreements only if they serve the country's interests. India always keeps the country's interests first. Speaking to an audience of industry leaders and entrepreneurs, the minister stressed the importance of mindset change within the micro, small and medium enterprises, MSME sector. He called for a shift towards collective growth and mutual support between small and large firms. The minister urged MSME stakeholders to actively inform the government about non-tariff barriers that are affecting their business. Meanwhile, from Gurugram, Mr. P.K. Banerjee, please ask your question. Mr. Banerjee, welcome.
Namaskar.
Namaskar.
मैं पूछना चाहूँगा
जी अपना जो सीनियर सिटीजन होने के बाद सबसे अच्छी एफडी में बचत खाता कौन सा रहेगा जिससे हम सीनियर सिटीजन हैं? तो
देखिए, पहली बात तो जो आप एफडी में इंटरेस्ट पैसा रखते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने इस बार बजट में उनको एक रिलीफ दिया है कि 1,00,000 तक का इंटरेस्ट आपको में टीडीएस बैंक नहीं काटेगा, और सुपर सीनियर हो जाते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसमें। जहाँ तक एफडी की बात है, नॉर्मली एक सीनियर सिटीजन के लिए भी और के लिए एक 5,00,000 की फिक्स डिपॉजिट की एक राशि है जिस पे उसको काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है। ज़्यादातर बैंक्स 40 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट्स भी आपको नॉर्मल रिटेल रेट्स पे से ज़्यादा देते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो आरबीआई टैक्सेबल फ्लोटिंग टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं उनमें भी आप निवेश कर सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स का तो नहीं मिलेगा। और जैसे किसी उपभोक्ता ने पूछा था पहले, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द प्राइमरी, उनके अंदर प्राइमरी होता है, उसके अलावा जो ज़्यादातर स्टेट बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब की ब्रांचेज भी एसबीआई के थ्रू रूट करती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, कोटक है और आईडीबीआई है, इनके थ्रू भी आप वो बुकिंग वो करते हैं आरबीआई के थ्रू, पर आपको बॉन्ड इशू करके देंगे। और ये जैसे मैंने कहा, सरकार के पास पैसा रहता है। तो मेरे विचार में फिक्स डिपॉजिट्स में अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत लंबे समय तक ना करें। अगर 5 साल का आपको ज़रूरत नहीं है तो 5 साल करें या आरबीआई करें, नहीं तो 1-1 साल के अंतराल पे करें। और अलग अलग बैंक इस समय काफ़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट में करें, कुछ सरकार में करें, बिकॉज सरकारी बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम देते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो इंटरेस्ट रेट्स अच्छा देते हैं। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपका बन जाता है जिसमें आपको एवरेज रिटर्न अच्छा मिल सकता है।
बिल्कुल, तो एक मिक्स टाइप का इन्वेस्टमेंट जो हम कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इस तरह का कर सकते हैं। और रुख करते हैं पिंक सिटी जयपुर का, जहां से राजेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजेश जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए।
सर, ये मेरे को एक अभी पता चला है कोई एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में, उसके बारे में पूछना था कि वो वैलिड है क्या। तो उसका नाम पता हूँ तो आप प्लीज बता पाएंगे सर?
राजेश जी, जैसा कि कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम इसमें किसी कंपनी के बारे में नहीं बताते हैं स्पेसिफिक, तो आप कुछ और सवाल जानना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं।
मीनवाइल फ्रॉम थाने वी हैव विजय। मिस्टर विजय वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो विजय।
हेलो।
हाँ विजय वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है, आई हैव लेस सेविंग्स एंड आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर मैं अपना घर बेच के अगर वो पैसा अराउंड मोर देन 1 करोड़ इफ आई पुट इन एसडब्ल्यूपी, तो उसका टैक्स इम्प्लिकेशन मुझे क्या रहेगा? एंड इफ आई लिव इन अ रेंटेड हाउस।
नहीं देखिए, ये आपने
मंथली रेगुलर इनकम,
करेक्ट, यू कैन डू दिस, इट इज अ गुड सजेशन विच यू हैव मेड। इफ यू डोंट हैव टू मेनी एक्सपेंसेस, यू कैन मूव फ्रॉम अ सेविंग टू हैव क्रिएट सम सेविंग एंड देन फ्रॉम द इंटरेस्ट अर्निंग्स क्रिएट अ रेगुलर इनकम फॉर योरसेल्फ। दैट सर्टनली इज फीजिबल, बट यू नो इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइस लाइक दिस व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशन, बिकॉज टैक्सेस जो होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर हर साल के साल चेंज होते रहते हैं, और उसके लिए आपको एक किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके पता करना पड़ेगा कि आपके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या रहेगी, बिकॉज टैक्स इम्प्लीकेशन आपकी जो नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम है उसके बेसिस पे होगा। अगर आप मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हैं, जो मिनिमम लेवल है, तो उससे फिर आपको टैक्स पड़ेगा ही नहीं उस केस में आपको। तो इसलिए आपको एक किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेना इसमें जरूरी है टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए।
जी
also I think somewhere ki house has a liquidity, house is not very liquid but has security and SWP would have liquidity,
yes,
but, so they have to consider that.
Yes, also, he has to consider that, but then if he has doesn't have saving and he needs a regular income which brings him sustainability, then his suggestion of wanting to liquidate his house, maybe he has no liability of children or other people and he needs that money now because he doesn't create any savings, then it is a good suggestion to liquidate a house as of now and then create a fixed deposit, because there could be medical emergencies, there could be other requirements which may come up for him in person.
So he needs a liquid.
So their liquidity requirement which he is wanting to put forward is a good advice, good you know, move which he's wanting to move.
जी, और अमन अब सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं ई के जैना से। हेलो।
हेलो।
हाँ जी नमस्कार,
बताएं।
Hello, I am speaking.
Yes, please.
Ji, Jana ji, please ask your question.
I am telling Mr. A.K. Jana from Kolkata.
Yes, sir.
My one question, please.
Yes, sir. Yeah, please ask your question.
Sir, please.
I have gathered 9 lakh short-term capital gain on against sale of debt fund. So, how long it should be to be carried out, carried forward for adjustment, tax adjustment? How long? Please answer. Please reply.
You need to reinvest within a span of about 3 years, this fund which is there. Now, exactly what kind of a product you have sold and what kind of a fund you have got. Normally, in case of capital gains, you need to actually reinvest it within the same kind of a product or anything which is going forward, whether it's a house or anything else, and then take it forward. It varies from 1 to 3 years, but again, depending on product to product, you will have to be specific. I will not be able to give you a specific answer what will be the tenure for your product which you have sold and what will be the capital gain there.
Our next caller from Shimla, Akash. Akash, please ask your question. Welcome.
Good evening. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूलिफ क्या होते हैं? यूलिफ के बारे में प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वो हमें यूलिफ टाइप की कोई में जो 25 साल हमें पैसा मिलेगा, रिटर्न आएगा और 12 साल तक हमें पैसा देना है और एक की और साथ में बोलते हैं इसमें आपको आपका इंश्योरेंस भी इंक्लूड रहेगा, ये क्या है? क्योंकि वो उसी के
देखिए जी, एक्चुअली अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से समझाऊं तो आपने इंश्योरेंस कंपनीज पहले प्रोडक्ट बेचती थी मनी बैक पॉलिसी के नाम पे, कि आप पहले हर बार देते रहिए पैसा, इंश्योरेंस भी मिलता रहेगा और आपको जो है बाद में पैसा भी मिलेगा। इसी तरीके से यूलिप के अंदर आप छोटे छोटे निवेश करते रहते हैं और फिर बाद में जाके आपको एक लमसम मिलता है, तो वो एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, सेव करने का। ये आपको देखना है कि आपको वो सेविंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बिकॉज अगर आपको उस टाइप की सेविंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास कैश फ्लो ठीक ठाक है, तो आपको इस तरीके से ना करके डायरेक्ट सेविंग्स जो आपको बल्क सेविंग्स करनी है उसको करें तो वो बेटर रहेगा। इस स्कीम में तभी जाते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती और रेगुलर इनकम होती है और आप उस रेगुलर इनकम में से कुछ थोड़ा बहुत अलग से सेव करके अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। जहाँ पे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं और आपके पास रेगुलर रिटायरमेंट बेनिफिट आने की चांसेस नहीं है।
From Delhi, we have Yogesh. Delhi, welcome. Please ask your question. Sorry, Yogesh, welcome. Please ask your question.
मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आजकल क्योंकि मैं भी हाल में बैंक गया था और अब सभी ऑलमोस्ट डिजिटल मोड का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कभी भी अभी भी बैंक में और सिस्टम में जो प्रचलन है चेक्स का और डिमांड ड्राफ्ट का है, तो क्या ये चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट अभी भी रिलेवेंट है और ये कब तक मतलब आपको लगता है कि ये बंद हो जाएंगे आने वाले टाइम में? दूसरा मेरा सवाल यह है कि ये बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, फिक्स इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही है या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए?
बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पहली बात तो ये डिसीजन सिर्फ आरबीआई के पास है कि कब तक कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलेगा या नहीं चलेगा। जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी में जो कमेटी है वो डिसाइड करे कि हमें ख़त्म करना है तो उस दिन वो ख़त्म हो जाएगा। ये ना बैंकों के हाथ में है ना ही किसी और संस्था के हाथ में है। जहाँ तक आपने बॉन्ड्स की बात करी, देखिए अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आप निवेश करके आप जो जान गए हैं, आपके पास ट्रैकिंग का टाइम है, समझने का टाइम है, देखने का समझने का टाइम है, तो आप डायरेक्टली बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। पर अगर आपका नहीं है, आप बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहते हैं, तो उस केस में फिर म्यूचुअल फंड में करें, बिकॉज म्यूचुअल फंड कोई एक ट्रेंड ऑफिसर होते हैं जो उसको देखते हैं। गलती वो भी कर सकते हैं, गलती आप भी कर सकते हैं, रिस्क दोनों में ही है। बिकॉज पहले म्यूचुअल फंड आज से 20 साल पहले तक सिर्फ सेफ एसेट्स में होते थे, अब वो शेयर मार्केट में भी करते हैं, तो जैसे आप करते हैं ऐसे वो कर सकते हैं। आप दोनों में से अप्रोच तब लें कि आप कैसे हैं, सेफ इन्वेस्टर हैं या रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट बॉन्ड में करें।
बिफोर वी वेलकम राजेंद्र विद हिज क्वेश्चन, ही इज ऑनलाइन, अ क्विक लुक एट आवर नेक्स्ट न्यूज स्टोरी। यूनियन Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw has said that the technological base is rapidly being prepared for achieving Viksit Bharat, highlighting India's tech-driven future during a convocation at IIT Hyderabad. This morning, he urged students to design world-class technologies and products. Mr. Vaishnaw announced the rollout of India's first indigenous semiconductor chip this year, with 6 semiconductor plants under construction, positioning India as a leading global player. He also touched on railway reforms, noting that the first bullet train will be launched in 2027 alongside the Vande Bharat version, with three being manufactured in Chennai. He discussed the India AI mission with free data sets and AI training programs. Mr. Vaishnaw expressed optimism that India will secure its position as one of the top two economies by 2047.
और इस खबर के बाद दिल्ली का रुख करते हैं और बात करते हैं राजेंद्र जी से. हेलो हेलो राजेंद्र जी, नमस्कार.
नमस्कार जनाब
जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
सीजन स्कीम
जी,
इसमें 8.2% इंटरेस्ट रेट है
जी.
सिंगल नाम में कितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है, और गलती से उसमें ज्यादा इन्वेस्ट हो गया है तो क्या इम्प्लीकेशन?
नहीं देखिए जी, गलती से ज़्यादा तो इन्वेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 लाख का उसमें लिमिटेशन है. अगर आप किसी के साथ मिलके करते हैं, जैसे अपनी स्पाउस के साथ मिलके करते हैं, तो उसमें 15-15 करके 30 लाख आप कर सकते हैं. पर 15 लाख का लिमिटेशन सीलिंग है उसके अंदर. और ये नहीं है कि आपने एक बैंक में एक कर्जा कर लिया, दूसरी जगह फिर 15 कर दिया, बिकॉज ये पैसा भी सरकार के पास जाता है. ये माध्यम ये है कि जैसे पीपीएफ रहता है, पर ये बैंकों के पास ही रहता है. पीपीएफ जो है वो पैसा सीधा सरकार के पास जाता है, ये पैसा बैंकों के पास रहता है. और ये स्पेशल एडवांटेज दिया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और आज से नहीं है, बहुत समय से 15-20 सालों से ये चलती आ रही है स्कीम. तो सेफ स्कीम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें लिमिटेशन है.
वेलकमिंग फ्रॉम दिल्ली, अक्षय, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
सर, माय क्वेश्चन इज, आई एम 40 years old and I want to know about NPS.
No, but I am not able to understand what do you
NPS
want
to... के बारे में
NPS, जाना NPS, NPS, National Pension Scheme. हाँ जी, तो पेंशन स्कीम देखिए, 40 years हैं आप, अभी आपने किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो, जो पैसा आपने बनाया है उसको कैसे निवेश किया है वो नहीं पता है. नॉर्मली जब हम यंग होते हैं, थोड़ा और यंग होते हैं, तो फ्यूचर के लिए अगर हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है, पेंशन स्कीम्स के बेनिफिट्स नहीं है, तो फिर हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके उसको थोड़ा सिक्योर बना सकते हैं. या फिर हम अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, जैसे कि रियल एस्टेट में करें, गोल्ड में करें, बॉन्ड्स में करें, या सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में करें, ताकि वो जाके पैसा हमें आगे जाके मिल सके. तो दोनों में से कोई भी, एनपीएस भी जो है पैसा आपका, कुछ मार्केट में रखता है, कुछ बॉन्ड्स में रखता है, कुछ सेव एसेट्स में रखता है, तो मिक्स करके आपको, तभी आपको वो आगे जाके रिटर्न दे पाता है. और स्पेशली जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है. ऑल्दो अब गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी एनपीएस स्कीम्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर पेंशन बेनिफिट्स व्हिच दे गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
अमन जी, जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, क्या एनपीएस एक लेट इन्वेस्टमेंट का है, या आप कभी भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो?
हाँ, नहीं, लेट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं.
राइट, बिफोर वी मूव एंड गो टू द क्लोज ऑफ द प्रोग्राम, लुक एट द यूएस स्टॉक्स. In the US markets, the S&P 500 and NASDAQ ended marginally changed on Friday, while the Dow fell 0.3%, overcoming a brief dip triggered by a report which indicated that US President Donald Trump was pushing for steep new tariffs on European Union products. The report said that the Trump administration was eyeing a minimum tariff of between 15 and 20% in any deal. The S&P 500 ended flat at 6,297. The NASDAQ composite gained just 10 points to reach 20,896. And the Dow Jones Industrial Average fell 142 points or 0.3% to end at 44,342. For the week, the S&P 500 gained 0.6%. The NASDAQ rose 1.5% and the Dow slipped 0.1%. We'd like to say, Mr. Aman Agarwal, thank you so much for coming on to our program. It was a pleasure, sir.
Thank you. Namaskar.
Bahut bahut dhanyawad aur aabhar.
Namaskar.
And that's all for today. Namaskar.
Aur ek bar gaura हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं. केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत तभी व्यापार समझौते करेगा जब वे देश के हितों की पूर्ति करेंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से अपना तकनीकी आधार तैयार कर रहा है. उन्होंने युवा पेशेवरों से विश्व स्तरीय तकनीकें और उत्पाद डिजाइन करने का आग्रह किया, और उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच अमरीकी शेयर बाजार सपाट बंद हुए. इसके साथ ही मार्केट कर मंत्र कार्यक्रम समाप्त हुआ. हमें इजाजत दें. नमस्कार.
नमस्कार.
मार्केट पत्रा, पत्रा।